हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 8 श्लोक संख्या 22, 23, 24, 25 और 26। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमस्ते ऋषभाय सात्वताम् विदुरकाष्ठा यमुहुकुयोगिना नीरस्तसाम्या तिशयेन राधसा स्वधामनी ब्रह्मणिरोस्यते नमः। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सत्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरातहूणा द्रपुरिन्दपुल्कषा आभीरशुम्भा यवनाखसादय येने च पापा यदपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। प्रचोदितायै न पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुरभूत्किलास्यत समीरिषीणां ऋषभ प्रसीदताम्। भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभु निर्मायशेते यदमूषु पुरुष भुङ्क्ते गुणांशो दशषोडशात्मक सोलङ्कृशिष्ट भगवान् वशांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय विधसे वपुर्ज्ञानमयं सौम्यं यन्मुखं गुरुहासवं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। दूसरे स्कंद अध्याय 8 जिसका शीर्षक है राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न। राजा परीक्षित ने अब तक बहुत बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न पूछ चुके हैं, इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, कर्मों के विषय में, जीव का दूसरा शरीर उसे कैसे प्राप्त होता है, भगवान और जीव में क्या अंतर है, भगवान इस संसार में आकर क्या क्या लीलाएं करते हैं, वर्णाश्रम धर्म के विषय में, और आज श्लोक नंबर 22 में सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि इस संसार में जो भगवान के शरीर में समाहित जीव हैं वो कैसे उत्पन्न होते हैं, और फिर इस संसार में जो पाखंडी लोग हैं वो कैसे उत्पन्न होते हैं, और इसके अलावा ये भी बताओ कि अबद्ध जीव आत्माएं यहाँ पर विद्यमान रहती हैं, मतलब जब बद्ध आत्मा होती है तब तक तो यहाँ पर अबद्ध जीव आत्माएं जो होती है मुक्त आत्माएं वो कहाँ होती है। तो श्लोक नंबर 22 में कहते हैं, यो वानो शायिनां सर्गः पाषण्डस्य च संभवः आत्मनो बन्धमोक्षौ च व्यवस्थानं स्वरूपतः। यो वानो शायिनां सर्गः पाषण्डस्य च संभवः आत्मनो बन्धमोक्षौ च व्यवस्थानं स्वरूपतः। यो वानो शायिनां सर्गः पाषण्डस्य च संभवः आत्मनो बन्धमोक्षौ च व्यवस्थानं स्वरूपतः। यो वानो शायिनां सर्गः, यो मन जो सब वामन अथवा अनुशायिनां यानी भगवान के शरीर में समाहित जो है सर्ग, उनकी सृष्टि कैसे होती है, अनुशायिनां वो भगवान के अंदर समाये हुए हैं तो उनकी सृष्टि कैसे होती है, और पाषण्डस्य च संभव जो पाखंडी है, पाषण्डी मतलब पाखंडी है, च संभव वो कैसे प्रकट होते हैं। आत्मनो बंध मोक्षौ च, आत्मनो मन जीवों का, बंध मन बद्ध, मोक्षौ यानी मुक्त हुए, च व्यवस्थानम स्वरूपतः, व्यवस्थान मतलब स्थित हुए, स्वरूपतः मतलब मुक्त अवस्था में। अनुवाद देखिए, कृपया यह भी समझाइए कि भगवान के शरीर में समाये जीव आत्माएं किस प्रकार उत्पन्न होते हैं, और पाषंडी जो पाखंडी जन हैं किस तरह से इस संसार में प्रकट होते हैं। यह भी बताइए कि किस प्रकार से अबद्ध जीव आत्माएं विद्यमान रहती हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान के प्रगतिशील भक्त को प्रमाणिक गुरु से पूछना चाहिए कि सृष्टि के समय भगवान के शरीर में समाये जीव आत्माएं किस प्रकार वापस आती हैं। जीव आत्माएं दो प्रकार की होती हैं, नित्य मुक्त तथा नित्य बद्ध। तो नित्य बद्ध जीव के भी दो प्रकार होते हैं, आज्ञाकारी तथा अवज्ञाकारी। आज्ञाकारी जीव के पुनः दो भेद होते हैं, भक्त तथा चिंतक, और चिंतक भगवान के शरीर से तदात्मय चाहते हैं, जबकि भक्त अपनी पृथक सत्ता बनाए रखकर भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहना चाहते हैं। ऐसे भक्त जो पूर्ण स्वरूप से शुद्ध नहीं होते तथा ज्ञान मार्ग की दार्शनिक अगली सृष्टि में और अधिक शुद्धिकरण के लिए पुनः बद्ध हो जाते हैं, ऐसे बद्ध जीव भगवान की भक्ति में प्रगति के साथ मुक्त हो जाते हैं। महाराज परीक्षित ने ये सारे प्रश्न अपने गुरु से पूछे जिससे वह तत्व ज्ञान में निष्णात हो सके। श्री प्रभुपाद की जय। तो श्री प्रभुपाद जी ने यहाँ बहुत सुंदर रीति से समझाया कि जितने भी जीव यहाँ पर हैं वो पहले भगवान के शरीर में ही समाहित है, यानी जब प्रलय होती है तो सब कारण दर्शाई विष्णु के अंदर समा जाते हैं, उनके उदर में समा जाते हैं, और फिर जब ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं तो हर एक प्रकार की सृष्टि होती है। और यहाँ श्री प्रभुपाद ने जीव आत्माओं के कितने काइंड्स होते हैं उनके विषय में बताया कि दो प्रकार के होते हैं, एक नित्य बद्ध और दूसरी नित्य मुक्त। नित्य मुक्त तो भगवान के धाम के लोग होते हैं, जो भगवान के पार्षद होते हैं, और नित्य बद्ध हम जैसे जीवात्मा। और नित्य बद्ध में कौन से होते हैं? दो प्रकार के। देखो यहाँ संसार में कितने सारे जीवात्मा है ना, वो सब नित्य बद्ध है। और उनमें दो प्रकार कौन से? एक वो जो भगवान की आज्ञा को मानते हैं, शास्त्र को पढ़ते हैं, गुरु महाराज के आदेशों का फॉलो करते हैं, नाम जप करते हैं और मतलब गुरु साधु शास्त्रों के अनुसार कार्य करते हैं। और दूसरे अवज्ञाकारी और दूसरे होते हैं वो शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, शास्त्रों में जो कार्य लिखे होंगे ना कि ये करना चाहिए वो नहीं करते हैं, और जो लिखा होगा कि भाई मांसाहार नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए और जुआ नहीं खेलना चाहिए, वो काम करते हैं, वो अवज्ञाकारी होते हैं। अब जो अवज्ञाकारी होते हैं उनके बारे में क्या बात करनी, वो तो नरक नहीं जाएंगे। लेकिन जो आज्ञाकारी जीव है उनमें दो भेद होते हैं। किस तरह से होते हैं? एक चिंतक होते हैं जो ज्ञानी जन होते हैं, और दूसरे भक्त होते हैं। और जो चिंतक होते हैं या ज्ञानी जन होते हैं उनका गोल क्या होता है? गोल ये होता है कि उनको भगवान के अंदर समा जाना है। और भक्त का गोल क्या होता है? डेस्टिनेशन प्लेस है भगवान के धाम में जाकर भगवान की सेवा करना। उनको अपना अस्तित्व समाप्त नहीं करना होता। भक्त हमेशा चाहते हैं मैं अपनी पृथक सत्ता, इंडिविजुअल जो मेरी स्तर है वो बना रहे और मैं भगवान की सेवा करूं। तो यहाँ श्री प्रभुपाल जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि ऐसे भक्त जो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होते तथा ज्ञान मार्गी दार्शनिक अगली सृष्टि में और अधिक शुद्धिकरण के लिए पुनः बद्ध हो जाते हैं। यानी कि फिर वास्तविक जो अभी तक प्योरिटी अगर भक्त में नहीं आई है, या फिर जो अभी तक ज्ञान मार्गी है उनको जो रियल आनंद है उधर अभी तक नहीं पहुंचे, तो फिर पुनः दूसरी सृष्टि में शुद्धिकरण के लिए भेज दिए जाते हैं। ऐसे बद्ध जी भगवान की भक्ति में प्रगति के साथ मुक्त हो जाते हैं। धीरे 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 आगे जाकर भगवान की भक्ति उनके अंदर प्राप्त होती है। मद भक्ति लभते परम, ब्रह्मभूत अवस्था से भी आगे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। और ये किस तरह से होता है वो सारे क्वेश्चन अभी सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित ने पूछे हैं और आगे इन सब के उत्तर दिए जाएंगे। आगे परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं, अपनी अंतरंग शक्ति से लीलाएं करते हैं, उनका आस्वादन करते हैं, और एक समय आता है वो सब कुछ अपनी सारी लीलाओं को बहिरंग शक्ति को प्रदान कर देते हैं और स्वयं साक्षी बनकर बस देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है। श्लोक देखिए, यथा आत्मतंत्रो भगवान विक्रीडत्यात्ममायया विसृज्य वा यथा माया उदास्ते साक्षिवत् यथात्मतंत्रो भगवन् विक्रीडत्यात्ममायया विसृज्य वा यथा माया उदास्ते साक्षिवत् विभु। यथात्मतंत्रो भगवान, यथा माने जिस तरह, आत्मतंत्र यानी भगवान स्वतंत्र है, आत्मतंत्र है। एक होता है आत्मतंत्र और दूसरा होता है परतंत्र। भगवान आत्मतंत्र है मतलब स्वतंत्र है, उनको कोई भी कार्य करने के लिए किसी की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जिस तरह वो आत्मतंत्र है, स्वतंत्र है, कौन? भगवान यानी भगवान श्री कृष्ण। वो क्या करते हैं? विक्रीडिति लीला करते हैं आत्म माया अपनी अंतरंग शक्ति से, और विसृज्य वा यथा माया, विसृज्य माने त्याग कर लेते हैं, वा यथा जिस प्रकार चाहते हैं माया यानी बहिरंग शक्ति। उदास्ते साक्षीवत विभु, उदास्ते माने वो उदासीन रहते हैं, कैसे? साक्षीवत, साक्षी की तरह बस साक्षी बनकर देखते हैं विभु, हालांकि वो सर्वशक्तिमान है। अनुवाद देखिए, स्वतंत्र भगवान अपनी अंतरंग शक्ति से अपनी लीलाओं का आस्वादन करते हैं, और प्रलय के समय वे उन्हें बहिरंगा शक्ति को प्रदान कर देते हैं और स्वयं साक्षी रूप में बने रहते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी समझा रहे कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने तथा समस्त अन्य अवतारों के स्रोत होने के कारण वे ही एकमात्र स्वतंत्र पुरुष हैं। ये जो स्वतंत्र बताए यथात्म तंत्र सब एक दूसरे पर आश्रित है ना, जितने भी देवी देवता भी हैं, चाहे ब्रह्मा जी क्यों नहीं हो, वो सब आधारित है भगवान की कृपा पर। लेकिन एकमात्र यथात्म तंत्र भगवान, आत्मतंत्र केवल भगवान श्री कृष्ण है। तो वे अपनी इच्छा अनुसार सृष्टि द्वारा लीलाओं का आस्वादन करते हैं। विक्रीड आत्ममाया वो संसार में आते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार लीलाओं का आस्वादन करते हैं। और फिर क्या करते हैं, और फिर विसृज्य वायथा माया विसृज्य कर देते हैं, मतलब प्रलय के समय इन्हें बहिरंगा शक्ति को प्रदान कर देते हैं। केवल अंतरंगा शक्ति से ही वे पूतना का वध करते हैं। यद्यपि वे माता यशोदा की गोद में लीलाएं करते हैं, जब वे संसार से प्रयाण करना चाहते हैं तो अपने ही वंश यानी यदुकुल के संहार की लीला रचाते हैं और ऐसे विनाश से अप्रभावित बने रहते हैं। जो कुछ घटित हो रहा है वे उसके साक्षी हैं। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो अपनी माया से अंतरंग शक्ति से कार्य करते हैं, लीलाएं करते हैं, फिर एक समय आता है कि वो प्रलय करा देते हैं। मतलब जिस तरह उन्होंने जाने के टाइम पर कैसे यदुकुल का सर्वनाश करा दिया, तो ये सब संहार भी संहार की लीला भी रचाते हैं और ऐसे विनाश से अप्रभावित रहते हैं। फिर उनको ये दुख नहीं रहता, अरे मेरा कितना बड़ा यदुकुल था, सब नाश हो गए, दुख नहीं रहता है। और जो जो कुछ घटित हो रहा है वो उसके साक्षी है, देखते रहते हैं सब कुछ उन्होंने। भगवान कहते हैं वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि शार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदन कश्चन। मैं तो जो भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो भविष्य में घटित होने वाला, वो सब जानता हूँ। तो भगवान साक्षी बनकर सब कुछ देखते रहते हैं लेकिन अप्रभावित रहते हैं। जो कुछ घटित हो रहा है वे उसके साक्षी हैं, तो भी उससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, वे सब प्रकार से स्वतंत्र हैं। शुद्ध भक्त को यह सब अच्छी तरह से जानना चाहिए, इसीलिए महाराज परीक्षित ने पूरी तरह से जान लेने की आज्ञा प्रकट की। आगे परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि आप मुझे सारे प्रश्न जो मैंने पूछे हैं उनका भी और जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ उन सब प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वे कहते हैं सर्वमेतच्च भगवन् पृच्छतो मे नु पूर्वशः तत्वतोर्हस्युदाहर्तुम् प्रापन्नाय महामुने। सर्वमेतच्च भगवान् पृच्छतो मेनु पूर्वशः तत्वतोर्हस्युदाहर्तुम् प्रपन्नाय महामुने। सर्वमेतच्च भगवान्, सर्वमेतच् यानी ये सब, एतच् यानी जो मैंने अभी प्रश्न पूछे हैं, च न पूछ सकने के कारण भी भगवान, हे भगवान। सर्वमेत यानी जो मैंने पूछे और च यानी जो नहीं पूछ सका, हे भगवान। पृच्छतो मे नो पूर्वशः, पृच्छतो मना पृच्छत जिज्ञासु का, मैं स्वयं अनुपूर्वशः मना प्रारंभ से, तत्वतः मतलब सत्य के अनुसार, अर्हसि अर्थात कृपा करके बताइए, उदाहृतम जैसे आप बताएंगे, क्योंकि प्रपन्नाय घिरा हुआ महामुनि, मैं हे महर्षि आप तो बहुत उत्तम हैं और आप अवश्य मुझ पर कृपा कीजिए और इन सारे प्रश्नों के जो मैंने आपसे पूछे हैं और जो नहीं पूछ सका हूँ, तो मैं आपकी शरण में प्रपन्न, मैं आपकी शरण में गिरा हुआ हूँ, आप कृपया मेरी इन सारी जिज्ञासा को शांत कीजिए। अनुवाद देखिए, परीक्षित महाराज कह रहे हैं भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप महर्षि, आप मेरी उन समस्त जिज्ञासाओं को जिनके विषय में मैंने आपसे प्रश्न किए हैं तथा उनके विषय में भी जिन्हें मैं जिज्ञासा करने के प्रारंभ से प्रस्तुत नहीं कर सका, उनके बारे में कृपा करके जिज्ञासा शांत कीजिए, क्योंकि मैं आपकी शरण में आया हूँ, अतः मुझे इस संबंध में पूर्ण ज्ञान प्रदान करें। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, गुरु अपने शिष्य को ज्ञान प्रदान करने के लिए सदैव उद्युक्त रहता, विशेष रूप से तब जबकि शिष्य अत्यंत उत्सुक रहता। ये दो क्वालिटी है, शिष्य उत्सुक रहेगा, शिष्य के अंदर उत्साह होगा, शिष्य के अंदर जानने की जिज्ञासा होगी, तो गुरु पूर्ण रूप से उसका ज्ञान देगा। लेकिन शिष्य ही डल माइंडेड होगा, उसको जानने की इच्छा ही नहीं है, छोड़ो कोई लेक्चर चल रहा है तो मन में क्या होता है, ये लेक्चर खत्म हो जाए बस अभी मेरे को प्रसाद खा के घर जाना है। तो फिर गुरु याद रखिएगा, आपके अंदर कितनी जिज्ञासा है आपको उतना ही ज्ञान प्राप्त होगा, वो गुरु के मुख से निकलेगा ही उतना। यदि शिष्य जिज्ञासु होगा, जानने की इच्छुक होगा, तो ही गुरु जो है वो पूर्ण रूप में ना उसे संतुष्ट करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रगतिशील शिष्य के लिए उत्सुकता बनाए रखना अत्यावश्यक है। महाराज परीक्षित विलक्षण शिष्य थे, क्योंकि वे नितांत उत्सुक थे। यदि कोई आत्म साक्षात्कार के लिए अत्यधिक उत्सुक नहीं होता है, तो केवल शिष्यता दिखाने के लिए गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी एक आदेश देते हैं कि केवल दीक्षा लेकर गुरु के पास नहीं जाना चाहिए कि बस हाँ मुझे ठप्पा लग जाए कि मुझे मैंने दीक्षा ले ली है, मैं शिष्य बन गया। उसके लिए अगर आपके अंदर आत्म साक्षात्कार के लिए अत्यधिक उत्सुकता नहीं है, भगवान के विषय में जानने की इच्छा नहीं है, श्रवण करने की इच्छा नहीं है, तो फिर क्या फायदा है शिष्य बनने का। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी साफ साफ बता रहे हैं कि यदि आप शिष्य बनते हो, गुरु स्वीकार करते हो, तो आपके अंदर शिष्य की क्वालिटी होनी चाहिए, जैसा कि महाराजा परीक्षित के अंदर है। महाराजा परीक्षित ना केवल जो कुछ उन्होंने पूछा है उसके विषय में जानने के लिए उत्सुक थे, वरना जो कुछ वे नहीं पूछ पाए उसके विषय में भी जानने के लिए उत्सुक है ना। वस्तुतः मनुष्य के लिए गुरु से हर एक बात पूछना संभव नहीं है, लेकिन प्रामाणिक गुरु सब प्रकार से शिष्य के लाभ हेतु उसे प्रकाश दे सकता है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी एक और खास बात बता रहे कि परीक्षित महाराज को यह अपॉर्चुनिटी प्राप्त थी ना कि वो अपने गुरु महाराज के सामने बैठे हुए थे और हर प्रश्न जो उनके माइंड में हो रहा था वो पूछ रहे थे, और साथ में ऐसा भी बोल दिया कि जो मैंने नहीं पूछा वो भी बताओ। तो हर एक शिष्य को यह अपॉर्चुनिटी प्राप्त नहीं होती है ना, हर एक शिष्य जो है वो इस तरह से गुरु महाराज से सारे प्रश्न नहीं पूछ सकता। लेकिन गुरु महाराज का संबंध केवल हमारा ये वपू संबंध थोड़ी होता है, गुरु महाराज अपनी वाणी के द्वारा हमें हर एक प्रश्न का उत्तर हृदय में प्रदान करते हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, गुरु महाराज जब देखते हैं कि ये कितना सिंसियर है, गुरु महाराज जब देखते हैं कि वो कितना सीरियस है, गुरु महाराज जब देखते हैं कि इसके अंदर जिज्ञासा है, तो गुरु महाराज सक्षम है। जिस तरह से भगवान स्वतंत्र है, उसी तरह से गुरु भी स्वतंत्र हैं अपने शिष्य को ज्ञान देने के लिए। उनको जरूरी नहीं है कि वो देह के साथ में ही रहे, उनके लिए जरूरी नहीं है कि अपने शिष्य को ज्ञान देने के लिए वो वपु रूप में उनके साथ रहे। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, जब जब शिष्य सिंसियर होगा, जो जो शिष्य सीरियस होगा, गुरु महाराज किसी भी तरह से उसे ज्ञान प्रदान कर देंगे, किसी न किसी स्वरूप में आकर प्रदान कर देंगे। तो हमें सिर्फ अपनी ओर से सिंसियर रहना है, सीरियस होना है, और जिज्ञासा के लिए उत्सुक रहना चाहिए। मुझे जानना है, मैं कृष्ण के विषय में जानना चाहता हूँ, मैं कैसे शुद्ध भक्त बनूं, मैं कैसे अपनी सेवा और साधना को अच्छे से करूं, मैं कैसे भगवान के इन लीलाओं को, भगवान के इन शब्दों को समझ सकूं। बस सिंसियरिटी, प्योरिटी, यही आपका फोर्स है, यही आपका धन है। ये जो श्रद्धा है ना गुरु और कृष्ण के अंदर, ये श्रद्धा आपका धन है। आपकी श्रद्धा को देखकर, आपकी सिंसियरिटी और प्योरिटी को देखकर, आपके जो साधना आप कितना अच्छे से कर रहे हो, उस साधना के
प्रयास को देखकर भगवान आप पे कृपा करते हैं। गुरु और गौरंग की कृपा कर साधना, ये साधन जो हम कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उससे भगवान नहीं मिलेंगे। उससे क्या मिलेगा? जब आप बहुत अच्छे से अपने साधन करोगे, गुरु और अपनी साधना और अपनी सेवा में जब आप एकनिष्ठ होकर उत्साह के साथ करोगे ना, तब गुरु और गौरंग कृपा करेंगे। जब जब भगवान कृपा करेंगे फिर क्या होगा पता है? फिर आपको शुद्ध गुरु का सानिध्य प्राप्त होगा। और भगवान कृपा पहले करेंगे, मिलेंगे नहीं। मिलेंगे कब? जब कोई शुद्ध गुरु आपको प्राप्त होगा, है ना। गुरु कृष्ण की कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं, और गुरु जब आपके ऊपर कृपा करते हैं तब कृष्ण प्राप्त होते हैं। तो ये बहुत ही उच्च स्थान है जिसको हम प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। उसमें डिसीजन नहीं लेना है कि मैं इसे गुरु बनाऊंगा, मैं इसे सीखूंगा, नहीं। आपको सिंसियर रहना है बस। आपको अपनी ओर से कितना 100% आप सिंसियर रहकर उत्साह के साथ भगवान को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। गुरु वो स्वयं भेजेंगे। गुरु आपको मिला है और उसके द्वारा आपके जिज्ञासा है वो स्वयं, ये सब उनका मैटर है, हमारा नहीं है। हमारा कितना है कि हमको सिंसियर होना है, हमको सीरियस होना है, हमको उत्साह के साथ भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना है। बस हमारा प्रयास ही हमारा साधन है, हमारा प्रयास हमारा अभ्यास ही हमारा धन है, हमारी श्रद्धा जो है वो हमारी पूंजी है। इसको लेकर आगे बढ़ेंगे, बाकी योगक्षेमम वहाम्यम, जिस चीज की जरूरत होगी भगवान प्रोवाइड करेंगे, और जो कुछ साथ में है उसको सुरक्षा भी प्रदान करेंगे। आगे परीक्षित महाराज कह रहे हैं, वे बताते हैं कि शुकदेव गोस्वामी से श्रवण करना और अन्य लोगों से श्रवण करने में क्या अंतर है। वे कहते हैं, अत्र प्रमाणम ही भवान प्रमेष्टि यथात्मभू अपरिचानुतिष्ठन्ति पूर्वेशां पूर्वजय कृतम् अत्र प्रमाणम हि भवान् परमेष्टि यथात्मभू अपरिचानुतिष्ठन्ति पूर्वेशां पूर्वजय कृतम् अत्र प्रमाणम हि भवान्। भवान मतलब आप, अत्र मन इस विषय में, प्रमाणम प्रमाण ही निश्चय ही, भगवान मतलब आप, परमेष्टि यथात्मभू, परमेष्टि मतलब ब्रह्मा ब्रह्मांड का सृष्टा, यथा जिस प्रकार, आत्मभू सीधे भगवान से उत्पन्न हुए, जैसे भगवान से डायरेक्ट ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो वो क्या हो गए? परमेष्टि हो गए, आत्मभू हो गए। उसी प्रकार आप जो है वो एज्ड ज्ञान बता रहे हैं, इसलिए आप क्या हो? अत्र प्रमाणम, आप तो आदि प्रमाण प्राणी ब्रह्मा के तुल्य हो। तो अपरे जानुतिष्ठन्ति, अपरे मतलब अन्य लोग, आपके अलावा, च केवल अनुतिष्ठन्ति, केवल अनुकरण करने के लिए, पूर्वेशाम प्रथानुसार, पूर्वजय यानी पूर्ववर्ती दार्शनिक द्वारा सुजाया ज्ञान कृतम किया हुआ। मतलब अनुवाद देखिए, हे महर्षि, आप आदि प्राणी भगवान सॉरी आदि प्राणी ब्रह्मा जी के तुल्य हैं। अन्य लोग केवल प्रथा का पालन करते हैं, जिस प्रकार पूर्ववर्ती दार्शनिक चिंतक किया करते हैं। श्री प्रभुपाद जी इस श्लोक को बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ ये दलील रखी जा सकती है कि सुखदेव गोस्वामी ही आध्यात्म संबंधी पूर्ण ज्ञान के एकमात्र अधिकारी नहीं, उन अनेक अन्य मुनि तथा उनके अनुयायी भी अधिकारी हैं। व्यासदेव के समकालीन अथवा उनसे भी पूर्व अनेक महर्षि हैं, यथा गौतम, कणाद, जैमिनी, कपिल तथा अष्टावक्र, और इन सभी ने अपने अपने दार्शनिक मार्ग प्रस्तुत किए हैं। पतंजलि भी इनमें से एक है। इस प्रकार इन छहों ऋषियों की आधुनिक दार्शनिकों यथा चिंतकों के ही समान अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी तथा उपर्युक्त छहों ऋषियों के दार्शनिक मार्गों में यही अंतर है कि जहां छहों ऋषि अपने चिंतन के अनुसार तथ्यों का वर्णन करते हैं, वहीं श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी प्रत्यक्ष ब्रह्मा से प्राप्त ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें आत्मभू कहा जाता है, अर्थात वे जो सर्वशक्तिमान भगवान से जन्मे हों और उन्हीं से शिक्षित हुए हों। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो ज्ञान एज इट इज भगवान से आया वो ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद जी ने वेदव्यास जी को दिया और वेदव्यास ने सुखदेव गोस्वामी को दिया। तो इनका मार्ग तो स्वयं आत्मभू यानी जो भगवान के द्वारा मार्ग है वही मार्ग है। दूसरे जितने भी ऋषिगण हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने अपने दार्शनिक मार्ग प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसीलिए उनको कहा गया अत्र प्रमाणम ही भगवान परमेष्टि यथात्मभू। और आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं वैदिक दिव्य ज्ञान का अवतरण सीधे भगवान से होता है। भगवत कृपा से ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, ब्रह्मा जी से नारद को और नारद से व्यास देव को ज्ञान मिला। सुखदेव गोस्वामी ने इस दिव्य ज्ञान को सीधे अपने पिता व्यास देव से प्राप्त किया। इस प्रकार शिष्य परंपरा से प्राप्त ज्ञान परिपूर्ण है। जब तक कोई शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त नहीं करता तब तक वह पूर्ण रूप से गुरु नहीं बन सकता। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का यही रहस्य है। भले ही उपर्युक्त छह ऋषि महान चिंतक हो किंतु चिंतन द्वारा प्राप्त उनका ज्ञान पूर्ण नहीं है। दार्शनिक मत प्रस्तुत करने में कोई ज्ञान मार्गी चाहे कितना ही पूर्ण क्यों न हो ऐसे ज्ञान कभी भी पूर्ण नहीं होता क्योंकि वह अपूर्ण मस्तिष्क यानी मन की उपज है। ऐसे ऋषियों की भी शिष्य परंपराएं होती हैं, किंतु ये प्रमाणिक नहीं होती हैं, क्योंकि वे स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण से प्राप्त नहीं हुई है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि चाहे कितना ही दार्शनिक चिंतन अपने तथ्यों को बताने में कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, जब तक वो शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त नहीं करता है तब तक वो पूर्ण रूप से गुरु नहीं बन सकता है। तो जितने भी यहाँ श्रील प्रभुपाद जी वापस से बता रहे हैं कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का यही रहस्य है। उपर्युक्त जितने भी ऋषि हैं, कौन कौन से, गौतम, कर्ण, जैमिनी, कपिल तथा अष्टावक्र, ये भले छहों ऋषि कितने ही महान चिंतक हों किंतु चिंतन द्वारा प्राप्त उनका ज्ञान पूर्ण नहीं होता है। दार्शनिक मत प्रस्तुत करने में कोई ज्ञान मार्गी चाहे कितना ही क्यों न पूर्ण हो ऐसे ज्ञान कभी भी पूर्ण नहीं होते क्योंकि वो अपूर्ण मस्तिष्क की उपज है, अपूर्ण है। हमारी जो इंद्रियां है वो अपूर्ण है, वो सही 100% सही रिजल्ट नहीं बताएंगी। जो ज्ञान भगवान से आता है ना वही पूर्ण है। इसलिए जो परंपरा भगवान से प्रारंभ हुई, अभी यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताए ऐसे ऋषियों की भी शिष्य परंपराएं होंगी, ठीक है ना। कोई ऋषि भी क्या करेगा, खुद से अपना ज्ञान प्राप्त करेगा, मेंटल से, अपने मानसिक से, मस्तिष्क से, और फिर बहुत सारे शिष्य बनाएगा। उनकी भी शिष्य परंपरा बनी लेकिन उनका कनेक्शन डायरेक्ट भगवान से नहीं होगा ना, ये प्रमाणिक नहीं होगा क्योंकि वह स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण से प्राप्त नहीं। नारायण के अतिरिक्त कोई भी स्वतंत्र नहीं हो सकता, अतः किसी का भी ज्ञान पूर्ण नहीं है क्योंकि हर एक का ज्ञान चला ही मन मस्तिष्क पर आधारित है। मन पदार्थ है, अतः भौतिक चिंतकों द्वारा प्रस्तुत ज्ञान कभी भी दिव्य और पूर्ण नहीं हो सकता। संसारी दार्शनिक स्वयं अपूर्ण होने के कारण अन्य दार्शनिकों से मतभेद रखता है और संसारी दार्शनिक का कोई अपना सिद्धांत न होने से वह दार्शनिक कभी नहीं कहा जा सकता। उनका अपना कोई सिद्धांत नहीं होता। महाराजा परीक्षित जैसे बुद्धिमान
पुरुष इन चिंतकों को नहीं मानते, वो किसी दूसरे गुरु के पास नहीं गए, उन्हें सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये शिष्य परंपरा से है। गुरु शिष्य परंपरा में जब तक कोई नहीं होता है तब तक वो पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। अब यहाँ आगे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, चाहे वे कितने ही बड़े क्यों न हो, वे तो केवल सुखदेव गोस्वामी जैसे अधिकारी से ही सुनते हैं, जो परंपरा पद्धति द्वारा श्री भगवान के अभिन्न श्री भगवान से अभिन्न होते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में विशेष बल देकर कहा गया है। श्रीला प्रभुपाद जी ने साफ बता दिया कि सुखदेव गोस्वामी इसलिए उन्होंने परीक्षित महाराज उनको स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि वे सुखदेव गोस्वामी डायरेक्ट से भगवान की परंपरा में जुड़े हैं, जो परंपरा पद्धति के द्वारा श्री भगवान से अभिन्न होते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कैसे बताया गया, भगवान ने कहा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राहु मनोरीक्षवा कवे ब्रवी एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। तो ये जो ज्ञान है वो परंपरा के द्वारा भगवान देते हैं और जो परंपरा के द्वारा स्वीकार करते वही वास्तव में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आगे सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज कहते हैं, बहुत ही सुंदर बात है, जब इतने सारे प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछे तो मानो सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि इतने सारे प्रश्नों के उत्तर तुमने पूछे हैं, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप कुछ खा पी लीजिए क्योंकि बहुत समय हो गया है, आपने कुछ ना खाया है और ना पिया है, तो आप कुछ खा पी लीजिए, फिर मैं आपको आराम से बैठ के सारे उत्तर दे रहा हूँ। उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नामे स्व परायन्ति ब्रह्मन्नंशनादमी पिबतो श्रुत पीयूषम तत्वाख्याद्भिदि विनिसृतम नमे स्व परायन्ति ब्रह्मन्नंशनादमी पिबतो श्रुत पीयूषम तत्वाख्याद्विनिसृतम नमे स्वः परायन्ति ब्रह्मन्नंशनादमि पिबतो च्युत पीयूषम् तद्वाक्याद्विनिसृतम् नमे स्वः परायन्ति नामना कभी नहीं मैं मना मेरा अस्व यानी प्राण परायन्ति निकल सकता है। वो कहते हैं आप चिंता मत करो, मेरे प्राण ऐसे नहीं निकलेंगे। ब्राह्मण हे ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण अनशनादमी अनशनत अमी मतलब अनशनत यानी उपवास के कारण, क्योंकि आप उपवास के कारण प्राण तब निकलते हैं जब जीव को ये पता चलता है कि मैं कितने टाइम से कुछ खाया नहीं है पिया नहीं है, तो उसको कमजोरी फील होती है इसलिए उसके प्राण निकलते हैं। लेकिन वो बोलते हैं परीक्षित महाराज बोलते हैं, नमे स्व परायन्ति ब्रह्मन अंशनादमे उपवास रखने के कारण मेरे प्राण नहीं निकलेंगे। क्यों? पिबतो च्युत पीयूषम पिबतो, क्योंकि आप ये मत समझिए कि मैं भूखा प्यासा हूँ, मैं तो पी रहा हूँ। पिबतो मतलब मैं पी रहा हूँ क्या अच्युत पीयूषम, अच्युत मतलब भगवान श्री कृष्ण के जो कथाएं हैं उनके पीयूषम उनका अमृत में पी रहा हूँ, और वो अमृत कहाँ से आ रहा है? तत्वाख्याब्धि निसृतम, तत्वाख्याब्धि आपकी वाणी रूपी सिंधु आपका समुद्र की तरह जो आपके शब्द हैं जिनमें भगवान की लीलाएं निरंतर आप मुझे पिला रहे हो उनको मैं पी रहा हूँ। विनिसृतम आपके मुख से वो अमृत निकल रहा है और मेरे कर्णों के द्वारा मेरे हृदय पटल में जाकर मुझे जीवन प्रदान कर रहा है। तो उन अमृत रूपी शब्दों को ग्रहण करने के बाद मुझे भूख प्यास लगी नहीं रही है, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ, मुझे तो और भी आनंद और तृप्ति का आभास हो रहा है। अनुवाद देखिए, हे विद्वान ब्राह्मण, अच्युत भगवान की कथा के अमृत का जो आपकी वाणी रूपी समुद्र से बह रहा है, मेरे द्वारा पान करने से मुझे उपवास रखने के कारण किसी प्रकार की कमजोरी नहीं लग रही है। श्रीला प्रभुपाद की, श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्रह्मा, नारद, व्यास तथा शुकदेव गोस्वामी की शिष्य परंपरा अन्यों के विशेष रूप से अन्यों से भिन्न है। अन्य मुनियों की शिष्य परंपरा समय की बर्बादी जैसी है, क्योंकि वे अच्युत कथा से विहीन है। ये जो शुकदेव गोस्वामी है, उनसे दूसरे जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, जो कुछ भी, शुकदेव गोस्वामी ने केवल भागवत का प्रचार किया ना। और भागवतम में क्या है, भगवान की सुंदर लीलाओं का वर्णन है। और जब हम भगवान की सुंदर लीलाओं को श्रवण करते हैं, तो उससे जीव आत्मा को तृप्ति होती है। लेकिन यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं, बाकी जितने भी अन्यों की जो शिष्य परंपरा है, वो इसलिए अलग है क्योंकि अन्य मुनियों की शिष्य परंपरा समय की बर्बादी जैसी है, क्योंकि वे अच्युत कथा से विहीन है। कारण तथा तर्क के द्वारा चिंतक अपने अपने सिद्धांतों का अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं, किंतु ये कारण तथा तर्क अचूक नहीं होते हैं, क्योंकि उनसे उत्तम अन्य चिंतकों द्वारा वे परास्त कर दिए जाते हैं। ऐसा होता है, जितने भी ज्ञानी जन हैं, वो क्या करते हैं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं। वो चाहे कितने ही सुंदर मुनिजन मनन करते ना, वो कितने ही सुंदर तरीके से वो अपना पॉइंट बताते हैं, लेकिन क्या होता है, दूसरा फिर उसको खंडन करता है, तीसरा फिर उसको खंडन करता है, बस ऐसे ही चलता रहता है। और क्योंकि उनसे उत्तम अन्य चिंतक को द्वारा वे परास्त कर दिए जाते हैं। महाराज परीक्षित को संसल मन के शुष्क चिंतन के प्रति तनिक भी रुचि नहीं थी। वे तो भगवत कथा में रुचि रखते थे, क्योंकि उन्हें लगा कि शुकदेव गोस्वामी के मुख से ऐसी अमृत कथा सुनने के कारण उन्हें कमजोरी का अनुभव नहीं हो रहा था। यद्यपि वे आसन्न मृत्यु के कारण अनशन कर रहे थे, तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनको ये चिंतकों के जो मेंटल स्पेकुलेशन या मनगढ़ंत जो चिंतन कर रहे होते हैं, जिसमें भगवान की कोई लीला नहीं, कोई कथा नहीं, बस केवल फिलॉसफी होती है, तर्क वितर्क होता, उसमें भक्तों का क्या काम। वो भक्त परीक्षित महाराज को ये नहीं पसंद लग रहा था, वो तो भगवान की कथाओं के अमृत को पी रहे थे। पीवत भागवतम रसमालयम, वो तो कंटिन्यू। और क्योंकि उन्होंने उनकी मृत्यु होने वाली थी, इसलिए उन्होंने उपवास रखा था, लेकिन फिर भी वो इन कथाओं से तृप्त थे और उन्हें कोई कमजोरी या भूख प्यास का अभाव नहीं हो रहा था। कोई चाहे तो ऐसे चिंतकों को सुन सकता है, किंतु दीर्घ काल तक ऐसा नहीं चल पाता। मनुष्य ऐसे घिसे पिटे चिंतन को सुनकर शीघ्र ही ऊब उठेगा, और संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यर्थ के चिंतन को सुनकर तुष्ट नहीं हो पाता। शुकदेव गोस्वामी जैसे महापुरुष से भगवान की कथा सुनते हुए कोई थकेगा नहीं, भले ही अन्य कारणों से वह क्षीण क्यों न हो चुका हो। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब कोई शुद्ध हमको भगवान की कथा सुनाता है, तो हमारे हृदय में आनंद, उत्साह और संतुष्टि होती है। लेकिन अगर केवल शुष्क चिंतन की बात हो या केवल फिलॉसफी हो, जिसमें कोई भगवान के विषय में कुछ बात नहीं हो, घिसे पिटे जो चिंतन होते हैं, उनको सुनकर जीव जल्दी ऊब जाता है, क्योंकि उसमें संतुष्टि नहीं है। और ऐसी कथाएं जो भगवान के भक्तों के द्वारा, शुकदेव गोस्वामी जैसे महापुरुषों के द्वारा सुनते हैं, तो उनमें कभी भी बेजारी नहीं होती है, भले ही अन्य कारणों से वह क्षीण क्यों न हो, लेकिन शुद्ध भक्त के द्वारा कथा सुनने में आनंद ही आनंद है। तो कभी कभी हमें भी ऐसा लगता है कि क्यों, हमको तो अक्सर ऐसा होता है कि कथा समाप्त होनी चाहिए, बहुत सारे लोग हैं। तो इसका कारण ये है कि हम अभी तक उस प्रेम जो कथा के अंदर आनंद है ना, उसको इसलिए प्राप्त नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी तक भावरोग इतना तीव्रता से लगा हुआ है, भौतिक आसक्ति है, ये काम है, वो काम है, ऐसा करना। लेकिन सुखदेव गोस्वामी अपने सारे कर्तव्यों को छोड़कर खत्म करके आ गए थे और उनको उनका एकमात्र अभी यही इच्छा थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा कंटिन्यूस भगवान की कथाओं को सुने। तो जब तक हमारी भौतिक आसक्ति है तब तक भगवत कथा में आनंद नहीं आता। जब तक अभी तक मोह है, जब तक अभी तक अपने आप को शरीर समझ के बैठे हैं, तब तक तो अभी संसार ही अच्छा लगेगा। लेकिन जब हम ये जान लेते हैं कि संसार जो है वो मेरे किसी काम नहीं आएगा, मेरे काम तो वास्तव में भगवान आएंगे, तो ऐसी सोच जब होती है तो फिर वो सारी चीजों से ज्यादा प्रायोरिटी जो है वो भगवान की कथाओं को देता है, भगवान के नाम को देता है। जब महाराजा परीक्षित ने ये सारे प्रश्न पूछ लिए और अपने विषय में बताया कि मैं बहुत आनंदित हो रहा हूँ, संतुष्ट हो रहा हूँ, तृप्त हो रहा हूँ, तो सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि उस समय सुखदेव गोस्वामी को कैसा लग रहा था। तो सूत गोस्वामी कहते हैं, सूत उवाच स उपा मंत्री तो राज्ञा कथायामिति सत्पते ब्रह्मरातो वृषं प्रीतो विष्णुरातेन संसिदे। सूत उवाच स उपामन्त्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पते ब्रह्मरातो वृषं प्रीतो विष्णुरातेन संसिदे। सूत उवाच यानी सूत गोस्वामी ने कहा, स वह सुखदेव गोस्वामी उपामंत्रित अर्थात इस प्रकार पूछे जाने पर राज्ञा राजा के द्वारा कथायाम यानी कथाओं में इति इस प्रकार सत्पते सर्वोच्च सत्य की, क्योंकि वो भगवान के विषय में जानना चाहते थे, ब्रह्मरात अर्थात सुखदेव गोस्वामी वृषम अत्यधिक प्रीत प्रसन्न हुए। जब किसी शुद्ध भक्त से भगवान के विषय में पूछा जाता है तो वो बहुत प्रसन्न होता है क्योंकि उस क्वेश्चन के उत्तर में उसे भगवान के विषय में कुछ बोलने का अवसर मिलता है, तो वो बहुत सत्पते अर्थात वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। सर्वोच्च सत्य के विषय में जब उन्होंने पूछा तो वृषम प्रीत और विष्णुरातेन, विष्णुरात जो है वो परीक्षित महाराज का नाम है, संसिदेम सभा के बीच में आज परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न पूछे हैं उनके उत्तर में जब सुखदेव गोस्वामी को भगवान के विषय में बोलने का अवसर मिल रहा है तो वो बहुत बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। अनुवाद देखिए, सूत गोस्वामी ने कहा, महाराज परीक्षित द्वारा भक्तों के संबंधित भगवान की कथाएं कहने के लिए आमंत्रित किए जाने पर सुखदेव गोस्वामी अत्यधिक प्रसन्न हुए। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी कहते, नियमानुसार श्रीमद् भागवत की चर्चा केवल भगवत भक्तों के बीच ही की जा सकती है। जिस प्रकार भगवत गीता की आधिकारिक व्याख्या श्री कृष्ण तथा अर्जुन यानी क्रमशः भगवान तथा भक्त के बीच में हुई, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत जो भगवत गीता का स्नातकोत्तर अध्ययन है उसकी व्याख्या सुखदेव गोस्वामी तथा महाराजा परीक्षित जैसे विद्वानों तथा भक्तों के बीच में हो सकती है, अन्यथा अमृत का वास्तविक आस्वादन नहीं चखा जा सकता। सुखदेव गोस्वामी महाराजा परीक्षित से प्रसन्न थे क्योंकि वे भगवान की कथाएं सुनने से तनिक भी नहीं ऊब रहे थे, अपितु वे उन्हें रुचि पूर्वक अधिकाधिक सुनना चाह रहे थे। मूर्ख व्याख्या कर वृथा ही श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम में अपना हाथ लगाते हैं, जबकि इन विषयों तक उनकी पैठ नहीं है। अभक्तों को इन दोनों श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ वैदिक ग्रंथों में दखल देने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। अतः शंकराचार्य ने श्रीमद् भागवत का भाष्य करने में हाथ नहीं लगाया। श्रीपाद शंकराचार्य ने अपने भगवद गीता के भाष्य में श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया, किंतु बाद में उन्होंने निर्विशेषवादी दृष्टि से टीका की है, किंतु अपनी स्थिति से अवगत होते हुए उन्होंने श्रीमद् भागवतम की टीका नहीं की। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी एक सुंदर बात बता रहे हैं कि गीता और भागवतम ऐसे ग्रंथ हैं जो सिर्फ वही समझ सकता है जो कि भगवान का शुद्ध भक्त हो, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अंत में बोला भी है कि यह इदम परमम गुह्यम मद भक्ति शोभदासते। हर किसी को नहीं बताना अर्जुन, हर किसी के समझ में ही नहीं आएगा, और इसीलिए हम देखते हैं कि गीता तो सब पढ़ते हैं लेकिन भागवतम को साधारण लोग स्पर्श नहीं कर पाते, क्योंकि भागवतम जो है वो स्पेशली हरि भक्तों के लिए है जो कृष्ण से प्रेम करते हैं। इसी श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर शंकराचार्य के विषय में बता रहे कि उन्होंने गीता पर तो टीका की लेकिन भागवतम जो है वो उस पर अपनी कोई भी टीका नहीं की और उसको स्पर्श नहीं किया। तो साधारण लोगों के लिए नहीं है भागवत, जो है वो परमहंस जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनके लिए है। श्री सुखदेव गोस्वामी को श्री कृष्ण का प्रश्रय प्राप्त था, ब्रह्म वैवत पुराण में भी इसकी व्याख्या की गई, इसीलिए उन्हें ब्रह्म रात कहा गया था। जब वो पैदा हुए थे तो तब उनका नाम ब्रह्म रात था, ब्रह्म रात रखा गया था। तो श्री प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं, श्रीमान परीक्षित जी महाराज विष्णुरात कहा जाता है क्योंकि उन्हें भगवान विष्णु का संरक्षण प्राप्त था। भगवत भक्त भक्त के रूप में भगवान द्वारा सदैव संरक्षित रहते हैं। इस संबंध में यह भी स्पष्ट है कि विष्णुरात को और किसी से ना सुनकर ब्रह्मरात से ही श्रीमद् भागवतम सुननी चाहिए, यानी जो भगवान के शुद्ध वैष्णव भक्त हैं केवल उन्हीं से सुनने के लिए। और यहाँ पर साफ साफ बता रहे हैं, दोनों का नाम दिया है कि उपामंत्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पते ब्रह्मरातो ब्रिशंप्रीतो विष्णुरातेन संसति। ब्रह्मरात बताने वाला होगा और विष्णुरात जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो सुनने वाला होगा, और जो परमहंस है वो बताने वाला होगा, तभी कथा का वास्तविक आनंद आएगा। तो क्योंकि अन्य लोग दिव्य ज्ञान को ठीक से प्रस्तुत नहीं करते हैं और इस तरह मूल्यवान समय को नष्ट करते हैं, तो हमारा पहला कर्तव्य ये है कि हम जिसे सुन रहे हैं वो शुद्ध वैष्णव होना चाहिए। और मैं केवल रीड करके बता रही हूँ, ये शब्द मेरे नहीं है। आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमको तो कोई है ना ब्रह्मराज सुनाने वाला नहीं है, कोई शुद्ध वैष्णव से सुनाने के लिए कोई मिला नहीं है। तो ये तो परमहंस श्री प्रभुपाद जी के शब्द हैं, उनको हम सिर्फ रीड कर रहे हैं। उनको जैसे एक स्पीकर होता है ना, माइक स्पीकर जो होता है उसमें से आवाज निकलती है, परंतु शब्द तो उसके होते हैं ना जो बोलने वाला है, है ना। अगर वो बोलना नहीं बोलेगा नहीं तो क्या माइक के अंदर ये सामर्थ्य है कि वो कुछ बोल सकता है? नहीं ना। उसी तरह ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द परम हंस ब्रह्मरात श्री प्रभुपाद जी के हैं, और इन शब्दों के अंदर पूरा पावर है कि वो हमारे हृदय को परिवर्तित कर सकते हैं, हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम को जगा सकते हैं। तो हमको एज इट इज इस ज्ञान को, इन शब्दों को समझने का प्रयास करना, बस श्रवण करते रहना। ये शब्द चमत्कार करेंगे, ये जो शब्द है ना भगवान ने हमें अवसर दिया है श्री प्रभुपाद जी के मुख से सुनने के लिए, तो हम बहुत बहुत भाग्यवान हैं कि हम इन शब्दों को श्रवण कर रहे हैं। भगवान अवश्य भगवान प्रयास से नहीं मिलेंगे, फिर मैं बता रही हूँ, भगवान तो प्रयास से हमारे प्रयास को देखेंगे ना, तो हमारे ऊपर कृपा करेंगे। और फिर हृदय में कृष्ण प्रेम खुद उत्पन्न करेंगे, हृदय की गंदगी को भी साफ करेंगे। हमको बस सिंसियर होकर इन शब्दों को श्रवण करना है, इन शब्दों को पढ़ना है। आगे सुखदेव सूत गोस्वामी कहते हैं,
प्राह भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म सम्मितम ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम ब्रह्म कल्प उपागते प्राह भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म सम्मितम ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम ब्रह्म कल्प उपागते।
शब्दार्थ, प्राह भागवतम नाम, प्राह मतलब कहा, भागवतम यानी तत्वज्ञान, नाम यानी नामक, पुराणम ब्रह्म सम्मितम, पुराणम ब्रह्म सम्मितम, पुराणम मतलब उपवेद, ब्रह्म सम्मितम मतलब वेदों का अनुकरण करने में, ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम, ब्रह्मणे यानी ब्रह्मा जी से किसने कहा, भगवत भगवान द्वारा कही गई, ब्रह्म कल्पते उस युग में जिसमें सर्वप्रथम ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, ब्रह्म कल्पते, और उपागते यानी प्रारंभ में ही। अनुवाद देखिए, जिन्होंने महाराजा परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देना यह कहकर प्रारंभ किया कि इस तत्व ज्ञान को सर्वप्रथम स्वयं भगवान ने ब्रह्मा से उनके जन्म के समय कहा, श्रीमद् भागवतम उपवेद है और वेदों का ही अनुकरण करता है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम उपवेद है, यानी जिस तरह से वेद जो है वो डायरेक्ट से कहीं से नहीं आ सकते, बल्कि कहाँ से शुरू होंगे, भगवान से शुरू होंगे, है ना। जो भगवान ने कहा है वही वेद है, तो जो भगवान ने बताया जो ज्ञान, वही वास्तव में जीव का कल्याण कर सकता है। तो इसीलिए महाराजा परीक्षित के जब प्रश्न सुने तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर देना कैसे प्रारंभ किया कि इस तत्व ज्ञान को सर्वप्रथम स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा था, वही ज्ञान जो भगवान से आ रहा है वही सुनने योग्य है, और कब ब्रह्मा जी से कहा था, जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। तो इसी तरह से जो ज्ञान परंपरा से आता है वही हमारा कल्याण कर सकता है। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमद् भागवत तत्व ज्ञान यानी भगवान का विज्ञान है। इस महान ज्ञान को ना जानने के कारण निर्विशेषवादी सदैव भगवान के सगुण रूप को ठीक से प्रस्तुत नहीं कर सकते, क्योंकि वो श्रीमद् भागवतम को नहीं समझते। गुरु परंपरा से ये जो शुद्ध कृष्ण प्रेम की शिक्षा है वो नहीं प्राप्त किए। तो श्रीमद् भागवतम वेदों तथा तत्व ज्ञान का ही अनुकरण है। इस ज्ञान को सीखने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह श्री सुखदेव के प्रतिनिधि के शरण में जाए और महाराज परीक्षित के पदचिन्हों का अनुसरण करे। वह अज्ञानतावश इसकी व्याख्या का प्रयास करके भगवान के चरणों के प्रति अपराध न करे। अभक्तों द्वारा हानिकारक ढंग से श्रीमद् भागवत की व्याख्या किए जाने से उसको समझने में काफी अराजकता उत्पन्न हुई है। जिज्ञासु को चाहिए कि यदि वह तत्व ज्ञान जानने का इच्छुक है तो वह इस ढंग से सतर्क रहे। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर आपको भागवतम श्रवण करना है, अगर आपको समझना है, तो किसी ऐसे भक्त की शरण में रहकर जो कि परंपरा से इस ज्ञान को लेता आया है, वही आपको भगवान की वास्तविकता के विषय में बता सकता। सुखदेव गोस्वामी भगवान के परम भक्त हैं और परीक्षित महाराज भगवान के विषय में जानना चाहते हैं। तो ये जब इस तरह के दो व्यक्ति, एक परम शुद्ध जिज्ञासु, एक परम शुद्ध भक्त जब मिलते हैं, तभी वास्तविक ज्ञान जो है वो प्रकट होता है। जिस तरह से हम परम वैष्णव श्री प्रभुपाद जी से श्रवण कर रहे हैं, तो हम श्रीला प्रभुपाद जी तो परम वैष्णव हैं, वो तो परम हंस हैं, वो तो अपने प्योर शब्दों को हमें प्रदान कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमारे अंदर भी प्योरिटी होनी चाहिए। हमारे अंदर क्या होना चाहिए कि हम भगवान के विषय में श्रवण करना चाहते हैं, कोई चैलेंजिंग मूड नहीं होना चाहिए। भगवान क्या कर रहे हैं उसको अपनी बुद्धि से कुछ उसके अंदर खोजने की जरूरत नहीं है। भगवान ने क्या किया है उन लीलाओं को केवल जानना ही पर्याप्त है कि भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने बांसुरी बजाई, भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान ने वो ये क्यों किया क्यों किया क्यों किया, ये नहीं होती है। भक्त की स्थिति क्या होती है, अच्छा भगवान ने ऐसे किया, अच्छा तो और क्या किया, है ना। ये तो यही पूछ रहे ना परीक्षित महाराज कि भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की। तो भगवान जो कर रहे हैं वो श्रवण करना ही भक्ति है, और वो श्रवण भी किसी शुद्ध वैष्णव से जब करते हैं तभी उसका वास्तविक लाभ प्राप्त होता है। आगे सूची सोनिक आदि ऋषियों को कहते हैं, यत यत परीक्षित ऋषभ पांडूनाम अनुपृच्छति आनुपूर्वेण तत्सर्वम् आख्यातुम् उपचक्रमे यत् यत् परीक्षित ऋषभः पाण्डूनाम् अनुपृच्छति आनुपूर्वेण तत्सर्वम् आख्यातुम् उपचक्रमे यत् यत् परीक्षित ऋषभ यद यद मन जो परीक्षित राजा परीक्षित ऋषभ श्रेष्ठ पांडुनाम यानी पांडवों में अनुपृच्छते पूछते जाते यानी कि वो परीक्षित जो समस्त पांडवों में ऋषभ श्रेष्ठ हैं वो जो पूछते जाते थे आनुपूर्वेण आदि से अंत तक सारा का सारा तत्सर्वम वह सब का सब पूर्णतः आख्यातुम वर्णन करने के लिए उपचक्र में अपने आप को तैयार किया। अनुवाद देखिए, उन्होंने अपने आप को राजा परीक्षित द्वारा जो कुछ पूछा गया था उसका उत्तर देने के लिए तैयार किया। महाराजा परीक्षित पांडु वंश में सर्वश्रेष्ठ थे, अतः वे उचित व्यक्ति से उचित प्रश्न पूछने में समर्थ हुए। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते महाराज परीक्षित ने बातों को यथारूप में जानने के लिए उनके अनेक प्रश्न पूछे, जिनमें से कुछ अत्यंत उत्सुकता पूर्वक थे, किंतु गुरु के लिए आवश्यक नहीं कि वह उसी क्रम से उत्तर दे जिस क्रम में शिष्य ने प्रश्न पूछे, किंतु सुखदेव गोस्वामी ने अनुभवी शिक्षक होने के नाते सभी प्रश्नों का उत्तर क्रमबद्ध रीति से दिया, जिस रूप में उन्हें यह शिष्य परंपरा से प्राप्त हुए थे। उन्होंने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, किसी को नहीं छोड़ा। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न नामक अष्टम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुए। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर रीति से समझाया है कि एक एक्सपर्ट जो गुरु होता है वो अपने अब शिष्य के अंदर उत्सुकता होती है, वो कभी क्या पूछता है कभी क्या पूछता है कभी क्या पूछता है, लेकिन गुरु के अंदर क्योंकि वो इतना एक्सपर्ट होता है अपने ज्ञान के अंदर जिसने क्रम से सीखा होता है, तो वो हर चीज इस तरह से सीरीज में बताता है कि फिर उसके बाद कोई जिज्ञासा रहे नहीं। तो यहाँ हमने जितने भी प्रश्न पढ़े हैं परीक्षित महाराज के उन सबको तो सुखदेव गोस्वामी बताएंगे, लेकिन इस तरह से बताएंगे कि सब चीज एकदम क्लियर हो जाएगी। इसलिए श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि उन्होंने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, किसी को नहीं छोड़ा। ये सारे प्रश्नों के वो धीरे धीरे उत्तर देंगे। हम सब भगवान की कृपा से और श्री प्रभुपाद जी के कृपा के द्वारा इन सब प्रश्नों के उत्तर को पढ़ेंगे और आप सब कृपया मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को बहुत अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।